الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج پیر کا دن ہے. پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو سوالات واٹس ایپ پر آئے ہوتے ہیں پہلے ان کا جواب دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ای میلز وغیرہ کے ساتھ یا میسیجز یا پھر ڈائریکٹ ٹیلی فون جب ہو جاتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، پھر جو حاضرین موجود ہوتے ہیں ان کے سوالوں کے جوابات جتنا بھی وقت ملے. ابھی ایک سوال آیا ہے انگلینڈ سے. السلام علیکم، آئی ایم سینڈنگ یو فیو کوشچنس، کائنڈلی رپلائی، پلیز فار گیو می ایف یو ڈس لائک اینی کوشچن. ان معراج شریف، وائی اللہ نیڈیڈ اے براک ٹو برنگ اور پروفیٹ پیس بی اپن ہیم فرام ارتھ ٹو ہیون؟ کوڈ ناٹ ہی ہیو بین دیئر وداؤٹ اٹ؟ وائی حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈیڈ ناٹ نیڈ اٹ وائل برنگنگ وحی؟ اصل میں کچھ سوالوں کے جوابات تو تحقیقی ہوتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جوابات ذرا تھوڑا سا انسان کا جو انر ہے اس کو جگانا پڑتا ہے، تو اس سے وہ جوابات خود ہی اس کو سمجھ آتے ہیں. مثلا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مغرب کی تین رکعتیں کیوں ہیں، تاک کیوں ہیں جبکہ باقی کی جفت ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری ناک آگے کو لگی ہے، پیچھے کو کیوں نہیں لگی؟ اس نے کہا اللہ ایسے ہی چاہتے ہو. نے کہا بس اللہ پاک یہی ایسے ہی چاہتے. اب اس میں جواب میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کو مطلب ذرا تھوڑا سا جگایا گیا ہے کہ بھئی ایسے سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نظام اللہ نے بنایا ہے تو اللہ مختار ہے، جو نظام بھی بنائے، چاہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اس ان کو ویسے بغیر براک کے لے جاتے، کیا ہمیں بغیر کائے پیے زندہ نہیں رکھ سکتے؟ فرشتے بغیر کائے پیے زندہ ہوتے ہیں نا، ہاں جی، تو ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون بس ہمارے لیے ایسا بنا ہوا ہے. یہی چیز تھی جو فرشتوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان سے پورو گزروا دیا، ان کو سمجھا دیا. ان نے کہا کہ آپ انسان کو پیدا کرتے ہیں تو یہ تو ایسا کرے ایسا کرے، تو اللہ پاک نے ان کے ٹیسٹ لے لیا. مقصد یہ ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ فضول باتیں ہیں. یہ ڈس لائک کوشچن کو میں ڈس لائک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کوشچن کے جو تھوڑا سا جو انر سائڈ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بیماری ہوتی ہے اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں. اس کے بجائے اگر کوئی کام کے سوالات کیے جائیں تو میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور زیادہ لرن کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے کوشچن نمبر ٹو، وائی اٹ از سیڈ ٹو فالو اونلی ون مسلک؟ If I see something more suitable or easy for me in some other fiqh, why I cannot follow it, as other imams also give their fatwas supported by Quran and Hadith, who gave us to go as a strict order to us to only follow one fiqh? Did Imam Abu Hanifa Rahmatullah or other imam ever said not to follow any other imam except me? یہ البتہ ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے، آئی تھنک وی شوڈ ڈسکس. مطلب اس کا اس کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ ایسا ہوا کیوں ہے. ہوا یہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، قرآن بھی ایک ہے، لہذا جو بات اتری تھی وہ ویسے اتری جیسے اللہ نے چاہا. لیکن اللہ پاک کی حکمت نے چاہا کہ کچھ لوگوں کی مطلب جانا وہ سمجھ مختلف بنائی. مثلا قرآن ایک ہے لیکن یہ مختلف لہجوں میں اترا ہے قراتوں کے لحاظ سے، اور سارے لہجے صحیح ہیں. تو یہ مطلب ظاہر ہے اللہ پاک نے سب لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا کر دیا. تو اگر مسلک صرف ایک ہوتا تو علم ممکن ہے بعض کے لیے مشکل ہوتا، بعض کے لیے آسان ہوتا. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں، شمالی امریکہ، شمالی جو دنیا، شمالی کرہ نصف کرہ شمالی جو ہے وہ ہے، نصف کرہ جنوبی ہے، اس کا الٹ ہے. یہاں جب گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے، یہاں جب سردی ہوتی ہے وہاں پر گرمی ہوتی ہے. اب اگر شمالی نصف کرہ کا ترتیب لازم کر دیا جاتا، ہاں جی، تو مثال کے طور پر یہاں گرمیوں میں روزے ہوتے، ہاں جی، تو وہاں ہمیشہ سردی میں ہوتے، تو کچھ لوگ کے ساتھ مسئلہ ہوتا اور کچھ لوگ اور ریلیکسڈ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے چاہا کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا وہ کیا جائے. تو اللہ پاک نے مطلب جائے کہ قمری نظام میں ایسا کر دیا کہ وہ روٹیٹ کر رہا ہے، تو کبھی جنوبی نصف کرہ کے مطابق وہ جو آ رہا ہے، کبھی شمالی نصف کرہ کے مطابق آ رہا ہے، لہٰذا ہر ایک کو ہر قسم کا موسم مل رہا ہے. تو عبادات کو اللہ پاک نے قمری نظام کے ساتھ وابستہ کر دیا، اس کی حکمت نہیں چاہا. تو اسی طریقے سے ائمہ جو اصحاب کرام ہے ان میں بھی بڑے اخلاص کے ساتھ اختلاف بعض مسئلوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے تو پوچھ لیتے تو بات کلیئر ہو جاتی. تو اب یہ جو ہے نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف باقی رہا تو مختلف احادیث شریفہ اس کے بارے میں آ گئے، کیونکہ احادیث شریفہ تو صحابہ سے جمع کیے گئے تھے نا، تو صحابہ کے جتنے اوپینینس تھے وہ بھی اس میں ریکارڈڈ ہو گئے. محدثین نے بالکل سیدھا سیدھا کام کر لیا، ان کو جمع کیا، صرف اس پہ فیصلہ نہیں کیا، جمع کیا. جبکہ فقہا نے ان جمع شدہ احادیث شریف کو انالائز کیا اور اس سے مسائل نکالے. اب جو مسائل نکال رہے تھے تو اب ظاہر حدیث شریف میں تو صحابی، پھر اس کے بعد تابعی، پھر تبع تابعی، اس طرح مطلب آ رہا ہے راویوں کے لحاظ سے. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ کنکلیوڈ کیا، کچھ مسائل جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہ کنکلیوڈ کر دیا. اب یہ کہ صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے جس کے چین میں ایک صحابی آ گیا تو اس نے اپنا مسئلہ اس طرح سمجھا، جس کے چین میں دوسرے صحابی آ گئے تو اس نے مسئلہ اس طرح سمجھا. کچھ اصولی اختلافات بھی آئے، مثلاً جس کو حدیث مرسل جیسے کہتے ہیں. تو حدیث مرسل جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا ہو، یعنی صحابہ سے روایت ہو. تو اب اس کے دو انٹرپریٹیشن کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہے، لہذا اس کا وہ اعتبار نہیں ہے جو مرفوع حدیث کا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین. اور ایک اس کا یہ ہے کہ اتنا مشہور تھا کہ اس کو سب نے روایت کر دیا، اور جو ہے نا مطلب اس کو ادھر پہنچنے تک کے لیے وہ وہی نہیں سمجھا کہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو بیان کیا جائے. تو اس کی زیادہ مشہوری کی دلیل تھی، تو لہٰذا اس کو لینا چاہیے. تو یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. ہاں جی، اب اوپینین میں ڈفرینس ہو گیا. اب جتنے مرسل مراسیل جس کو ہم کہتے ہیں مرسل احادیث ہیں، ان سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر لیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا. تو اب ڈفرنس آف اوپینین آ گیا، لہٰذا بہت سارے مسئلوں میں فرق پڑ گیا. یہ بھی ایک بات ہو گئی. اب یہ جو چیز ہے اختلاف جو آتا ہے، تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ آپ رینڈملی چن لیں، بس ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہے، اور ایک یہ کہ باقاعدہ آپ تحقیق کر لیں، تدبر کر لیں، اس کے اندر غور و فکر کر لیں، انالیسس کر لیں، اور ہمیں حکم اس کا ہے. ہاں جی، تو جو حضرات ایسا کر سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیا، تدبر کر لیا، غور و فکر کر لیا، ان نے اسے مسائل مستمد کر لیے اور رینڈملی اس کو نہیں لیا، بلکہ راجح، مرجوح، ناسخ، منسوخ، تمام چیزوں کو دیکھا اور اس کے لحاظ سے انہوں نے فیصلے کیے. اب فیصلوں میں اختلاف کی وجہ سے مختلف فقہ بن گئے، اور وہ فقہ ان کے شاگردوں کے لحاظ سے آگے فلوٹ ہو گئے. اب ये जो बात है कि आगे जाकर दूसरे लोगों को क्या करना है। तो अब ये वाली बात है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कभी एक इमाम से रहता है, कभी दूसरे से रहता है, कभी तीसरे रहता है, तो उसमें असल में वो अपने नफ्स की मानता है, अपनी आसानी को देखता है। मतलब वो तहकीक को नहीं देखता कि तहकीक किसी की क्या है, वो अपने नफ्स को देखता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चार डॉक्टर किसी को दवाई लिख दें, चार प्रेस्क्रिप्शन हो, उसमें जिस जो जो मीठी मीठी दवाइयाँ हों वो सब मैं चुन लूँ और कड़वी कड़वी दवाइयाँ सब के रख लूँ, तो क्या ख्याल है वो मरीज़ ठीक हो जाएगा? मरीज़ का धोखा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, तो इसी तरीके से जिसने अपनी मर्जी से चुन ली तो उसने तहकीक चूंकि नहीं की न, तो मतलब ज़ाहिरुद्दीन पर सही नहीं चल सकेगा। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि इस तरह रेंडमली तो नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं सबसे ले लूं, बल्कि इसमें ये आसानी ज़रूर है कि आप जिस मसलक पे हैं उसी मसलक पे रहे तो उसके प्लस माइनस सब आपको मिल जाएंगे। जैसे इमाम हनीफा रहमत, कुछ चीज़ें बहुत सख्त है, कुछ आसान है। मिसाल के तौर पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस मसले में तो सख्त है कि खून आ गया तो वजू टूट जाएगा, लेकिन औरत के टच होने से, चाहे वो अपने बीवी क्यों ना हो, वजू की हालत में इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक वजू टूट जाता है। हाँ जी, तो अब ये कि अब हज पे जब हम जाते हैं तो ये शवाफ़ सारे शाफ़ी होते हैं, अब वो बड़े मुश्किल में होते हैं कि क्या करें, अपने औरतों को कैसे संभालें। हनाफ के लिए कोई मसला नहीं होता। हाँ जी, अब उनको हाथ से पकड़ के ले जा सकते हैं। तो अब ये जो बात है, कुछ चीज़ें हनाफ के मुश्किल है, कुछ चीज़ें शाफ़ी के मुश्किल, कुछ हनाबले के मुश्किल है, कुछ मालिके के मुश्किल है, नेट रिजल्ट सबका एक है। अब मैं सबके वो आसान आसान ढूंढ लूँ तो वो तो नफ्स की बात है, और अगर एक लूँ तो मुझे बिल्कुल एक एवरेज रिजल्ट मिल गया। तो यही हम कहते हैं कि किसी एक मसले को फॉलो कर लो और पूरा फॉलो करो तो आपको इसके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इमाम हनीफा रहमत के फ़िक्र पे नहीं चल सकते तो बेशक इमाम शाफी रहमत के फ़िक्र पे चलें, लेकिन पूरा पूरा पर चलें। हाँ, पाकिस्तान में अलबत्त आपके लिए मुश्किल ये होगी कि यहाँ शाफी उलमा नहीं है, यहाँ शाफी की किताबें नहीं है, तो मसले में पड़ जाओगे, मुश्किल अपने लिए डाल लोगे। तो लिहाजा क्यों उसको छोड़ते हो, हक मसले के उसको खामखा क्यों छोड़ते हो? हाँ, तहकीक अगर आपकी हो जाए, तुम इतने बड़े आलमों के समझो कि इमाम हनीफा रहमत के फ़िक्र से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो फिर एक अलहदा बात है। उलमा में बाज़ ऐसे गुजरे हैं जिनने ऐसे किया है, लेकिन उसके लिए इज्तिहाद, इसके लिए ख़ुद बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे जाने की ज़रूरत है। उससे पहले पहले इस किस्म का फ़ैसला एक खामखा एक ज़हनी आयशी है, तो इस वजह से हम तो रिकमेंड नहीं करते। हाँ, हर एक अपने अपना सोच है, कोई करता है तो लेट हिम डू, एंड मतलब जो है वो जो इसके मसाइल और बाद में भुगतेंगे भी, अगर उसने गलत किया है तो ही बोल सफर मतलब जा रहे। आर अवर फोर इमाम्स फतावाज आर फाइनल वर्डिक्ट, कैन अ स्कॉलर और ग्रुप ऑफ स्कॉलर डिसग्री विद एनी ऑफ देम विद सपोर्ट ऑफ कुरान हदीस, वाई नॉट? हर एक के साथ इख्तलाफ किया गया है, ये चार जो बने तो इख्तलाफ नहीं हुआ, चार चार फीका बने हुए ना, तो इख्तलाफ तो हो गया ना, तो इस वजह से और कोई भी नहीं कहता दूसरा गलत है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लिहाजा हर एक ने इसको सपोर्ट कर लिया कि ठीक है। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को हारून रशीद ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि आपके फक्र को, यानी इमाम मालिक को तमाम ममलिकत के ऊपर नाफिज कर दूँ। उस वक्त उनकी बड़ी सुल्तनत थी। एक दिन वो बादल जा रहे थे, तो जोश में आके कहा कि बादल जहाँ भी बरसोगे मेरी सल्तनत पे बरसोगे, मेरे सुल्तनत पे बरसोगे। वो बात उनकी सही थी। तो इतनी बड़ी सुल्तनत पे वो कहता है कि मैं आपके फिक्र को नाफिज करना चाहता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि हर जगह पर सहाबा पहुँच गए हैं और वहाँ के लोगों ने उन सहाबा से ले लिया है, लिहाजा उनके साथ इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं है। जो उस जिस मसलक पर है वो ठीक है। इसका मतलब है कि जोग्राफियाई किस्म की चीज़ हो गई, जहाँ जहाँ जो जो इमाम जो जो सहाबा पहुँचे थे वहाँ पर उनका उनसे मतलब, जैसे कूफा में जो सहाबा अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अली रतलान थे, लिहाजा हमारे फिकानफी ज़्यादातर अली रतलान और उनसे मुस्तनबत है जो है ना वो, मतलब जो है ना वो अली रतलान से। और दूसरी तरफ जो है ना, मतलब ममालिक रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर चूंकि अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह, तो वहाँ उनका फिक्र ज़्यादातर वो चला है। तो इसी तरीके से मतलब यह है कि जो जहाँ जहाँ पर पहुँचा है वहाँ वहाँ उनका फिक्र राइज हो गया। खुद मुझे जर्मनी में, मैंने एक दफ़ा तकलीद के मौजू पर बयान किया अरबों में, 20 मिनट का बयान था, और वो भी टूटी फूटी अरबी में। हाँ जी, लेकिन उसका ये फ़ायदा हो गया कि वो उसका जो उनका जो सदर जलसा था, वो सुबह सवेरे 2-3 दिन के बाद आया और कहते जी मैं तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिया। कहते जी असल वजह ये थी कि मैं आपकी तकरीर से मुतासर हो गया था, तो मैं भी मुकल्लिद बनना चाहता हूँ। हाँ जी, तो मैं किस इमाम का पैरोकार बन जाऊँ, क्योंकि ये इमाम हनीफा रहमत सब का जो फिक्र, वो उसके लिए अब किताबें हमारे मुल्क में नहीं है और ना उनके उलमा है, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा था कि सारे हनफी बन जाओ, कहते नहीं। मैंने कहा अब भी नहीं कहता, अब आपके लिए मुनासिब यह है कि आप शाफी मसलक इख्तियार करें। क्यों? क्योंकि शाफी की किताबें भी हैं, शाफी के उलमा भी है, और हमारे लिए इमाम शाफी रहमत सब इतने बड़े वलीउल्लाह है जिस तरह इमाम हनीफा रहमत अल्लाह, लिहाजा में तो कोई मसला नहीं है। तो आप शाफी बन जाए, और फिर उसके बाद वो शाफी बन गए, तो इस वजह से हमें कोई तासुब नहीं है, लेकिन बिलावजह ख़ारिश भी नहीं है कि खामा खा जो है ना एक को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाएं। वाई सीरीज ऑफ इमाम स्टॉप्ड एट नंबर 4, वाई डोंट वी हैव मोर इमाम्स आफ्टर 4th इमाम्स? वाई मुहद्दिसीन सीरीज है स्टॉप्ड? मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये अल्लाह पाक ने जिनसे काम लेना चाह उनसे ले लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो हाफिज़ा था, ऐसा है आजकल? हाँ जी, ज़रबुल मिसल हाफिज़ा था, ऐसे अजीब अजीब इस तरह इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की जो ज़हानत और फ़तानत है, इसका मिसाल है आजकल? हाँ जी, ये एक दौर था जिसमें अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को पैदा किया। अल्लाह पाक का काम यही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए लोगों को पैदा फरमा देते हैं। तो जो मतलब मुहद्दिसीन की मतलब ज़रूरत थी, तो अल्लाह पाक ने ऐसे लोग मतलब हाफिज़े वाले बना दिए कि मतलब जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और ये हज़रात, तो उनने इसकी खिदमत की। और उसके बाद में जो जो फुकहा है, अल्लाह पाक ने ऐसी ज़हानत और फ़तानत से उनको नवाजा कि उनने ऐसे अजीब अजीब मतलब जो है ना वो एनालिसिस किए और उससे फ़िक्र इस्तिंबात किया। अब देख के मैं आपको बताऊँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सब कुरून उला में रहे गुजरे। खैरुल कुरून करनी सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताबी हैं, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये तब ताबी हैं। तो ये सब खैरुल कुरून में, उसके बाद तो खैर, उसके बाद तो फितना है, दौरे फितन है। अब यह है कि मतलब खैर कुरून के लोगों को छोड़कर हम फितने वाले लोगों के पास आ जाएंगे, ये कोई अच्छी बात होगी? इस वक्त इस पेंडोरा बक्स को अगर खोल दिया तो इतने इख्तलाफात होंगे कि आप कभी भी इसको पूरा नहीं कर सकेंगे, और कोई भी स्टेबल नहीं रहेगा, और एक अनार्की की किस्म सिचुएशन बन जाएगी जिसमें अजीब व गरीब लोग फतवे देंगे। और अभी हैं, हम जिनने इमामों को छोड़ा है उनके फतवे मैं आपके सामने बयान कर लूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना, मतलब ये कि ये जो है ना, इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। मसला क्या है, आप 4 से ज़्यादा, मैं अमेरिका में था तो ये नमाज पढ़ रहा था, एक अरब नमाज पढ़ा रहे थे, तो मुझे कहते पैर खोलो। मैंने कहा प्लीज़ लीड द प्रेयर। अच्छा, कहते नहीं पैर खोलो, फिर मैंने कहा प्लीज़ लीड द प्रेयर। खैर, सब लोगों ने कहा जी बस आप नमाज़ पढ़े, फिर बाद में देखेंगे। मैंने कहा भाई अगर आपने डिस्कशन करनी तो मैं फ़लाँ कमरे में जाऊँगा, उधर आ जाओ। अच्छा, खैर मैं नमाज पढ़ ली, उनके पीछे नमाज़ पढ़ ली गई, फिर उस कमरे में हम इकट्ठे हो गए। अब उस कमरे में जब इकट्ठे हो गए तो जिस साहब का कमरा था वो बड़े होशियार आदमी थे, तो ये मुझे समझाने लगे, मैं इसका जवाब देने लगा। तो उस साहब ने जो कमरे वाला था उसने बहुत खूबसूरत बात की, उनने कहा 4 इमाम आर सफिशेंट, यू शुड नॉट बिकम द 5th। बस ठीक है ना, 4 काफ़ी है, तो आप 5वां क्यों बनना चाहते हैं? बस ठीक है, उन्हीं में से मैं, हम हनफी हैं, बस उनके साथ खुश हैं, तुम अगर हम्बली हो तो उनके साथ खुश हो जाओ। हाँ जी, अगर कोई शाफी है तो उनके साथ खुश हो जाए, अगर कोई मालिक है तो उनके साथ खुश हो जाए। भाई खामखा मैं अपना मसले किसी के ऊपर क्यों इम्पोज कर दूं? व्हाट इज नीड ऑफ दिस? और ये मैं आपको बात बताऊं, एक सोच गुजरा है खवारिज का भी। खवारिज जो होते थे वो सिर्फ अपने मसलक को सही समझते थे, वो किसी और को सही नहीं समझते थे। इस वजह से इनने बहुत फसाद मचाया था और आप सब ने उनके बारे में पेशनगोई फरमाई थी। सहाबा से फरमाया था कि अमाल के लिहाज से इतने आगे होंगे कि तुम अपने आप को उनके सामने कम समझोगे, लेकिन दीन से वो ऐसे निकल जाएं जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। ऐसे लोग गुजरे। हाँ जी, तो ये जो खारजी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ए अली, वो बड़ा बदबख्त हो गया उस उम्मत का जो तुझे शहीद करेगा। तो खारजी ने उसको शहीद किया, इब्न बलजम ने शहीद किया। हाँ जी, तो इसका मतलब ये कि ऐसे बदबख्त लोग थे लेकिन बाज़ार बड़े अमाल के पक्के, रोज़ों के लिहाज से, नमाजों के लिहाज से, दूसरे उसके लिहाज से, इस मुजाहदात के लिहाज से सब पक्के थे, लेकिन दिमाग के अंदर फसाद। हाँ जी, तो इस वजह से मतलब ये है कि हमें इन तशद्दुदात में नहीं जाना चाहिए। जो रिलैक्सेशन मौजूद है उस रिलैक्सेशन से फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो रिलैक्सेशन यही कि आप किसी भी इमाम को फॉलो करें, एक को पूरा पूरा फॉलो करें, क्योंकि अगर आप दरमियान में मिक्सिंग करते हैं तो इससे आपको अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे आपका नफ्स आपके ऊपर गालिब आ जाएगा, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। Why we Sunnis mostly don't give any reference in our talk about life and fiqh of Imam like Hazrat Jafar, Baqir, Raza, Zain, Zainul Abidin, etc. Ali Tashayyu says they are also reliable sources of Sharia as they belong to family of Prophet, peace be upon him. So they should be true source of Sharia. Kis Sunni ne aise inkar kiya hai? मैं तो बड़े हैरान हूँ, पता नहीं इसको किसने कहा। किस सुन्नी ने इससे इनकार किया कि बड़े लोग नहीं थे? बड़े लोग थे। अलबत्ता मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक शिया के साथ मेरी बात हुई, मेरे दोस्त थे दफ्तर में। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा अभी तक कि तुम जाफरी क्यों न हो, हालांकि तुम मामा जाफर सादिक्रम के औलाद में से हो, हमारे दादा हैं सारे। कहते ये सवाल तो मेरे दिमाग में कटक रहा था मुसलसल, लेकिन मैं नहीं कर सका आपसे। अब आपने खुद ही कह दिया तो आप बता दें कि आप क्यों नहीं हैं। मैंने कहा हम जाफरी हैं, तुम जाफरी नहीं हो। उसने कहा कैसे? मैंने कहा हम जाफरी, तुम जाफरी नहीं हो। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह के साथ न होता तो मैं हलाक हो जाता। लौला सनतान लहलक नुमान, अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक अहमद के साथ न गुजारे होते तो नुमान हलाक हो जाता। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर हरम शरीफ में बैठे हुए हैं हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और सवालों के जवाब दे रहे हैं, फतवे दे रहे हैं। इतने में किसी ने आकर कान में कहा कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह फलां सुतून के पीछे बैठे। हज़रत का चेहरा जर्द हो गया, उठे, उनकी खिदमत में जाकर उनके हाथ को बोसा दिया कि फरजंद रसूल, आप तशरीफ लाएँ, आप जब मौजूद हैं तो लोग आपसे सवाल करेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। ये मुझसे बड़ी गुस्ताखी, मुझे पता नहीं था कि आप मौजूद हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, मैंने आपके सवाल जवाब सुन लिए, मैंने अपने आबा अजदाद से इसके खिलाफ नहीं सुना। हाँ जी, ये वो मशहूर सनद है जो हरम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह से मिली है। तो मैंने कहा जो फिका हनफी है वो जाफरी है, क्योंकि उस सनद के एतबार से, उस सनद के एतबार से हम जाफरी है ना, क्योंकि जाहिर इमाम जाफर सादिक ने उनको इजाज़त दे दी तो हम जाफरी हो गए। हाँ, अलबत्त आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर आप जाफरी क्यों नहीं कहते, फिका जाफरी क्यों नहीं कहते, तो फिर फिका बाकरी क्यों नहीं कहते, फिर फिका जैनुल अबिदीनी क्यों नहीं कहते, फिर फिका हुसैनी क्यों नहीं कहते, फिर इसके बाद फिका अलवी क्यों नहीं कहते, फिर फिका मोहम्मदी क्यों नहीं? भाई ये तो तदवीन जिसके जरिए से हो गई है उसका नाम है, फिका तो वही है जो चला आ रहा है, ये सिर्फ तदवीन मुदव्विन के नाम के साथ चलता है। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कादरी सिलसिला का इजरा कर दिया, कादरी असकार का, तरीक़ेकार का, तो कादरी सिलसिला हो गया। तो क्या वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत भी इस सीरीज के अंदर बुजुर्ग थे? उनके वो शेख नहीं थे? बिरुन के शेख, पेरुन के शेख, पेरुन के शेख, ये सब थे ना, लेकिन नाम किसका चला? नाम तो कादरी चला, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत। तो मैंने कहा जो नाम चलता है वो मुदव्विन का चलता है, हाँ जी, बाकी उस्ताद होते हैं उनके, इमाम मुजद्दद अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह, सब कहते हैं जी नक्शबंदी या मुजद्दिदी या, हालांकि वो खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह के खलीफा है, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये वाली बात है, बहरहाल वो समझ गए। तो असल बात ये है कि फिर मैंने कहा आप इसलिए जाफरी नहीं है, ये भी मैंने कहा आप इसलिए जाफरी नहीं है क्योंकि आपके यहाँ ये उसूल मैंने सुना है, आपसे सुना है कि आपके यहाँ तीन आयतुल्लाह मिल जाए तो कोई हुक्म भी तब्दील कर सकते। तो कितनी दफ़ा तीन तीन आयतुल्लाह मिलकर उन्होंने कितनी चीज़ें तब्दील किए, तो आपका फिक्र तो मौजूद ही नहीं रहा। दिस इज समथिंग अदर विच यू आर फेसिंग, ये वो चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, मैंने कहा जवाब भी इस नाश्री है और तुम भी इस नाश्री हो। तुम जो है ना, मतलब जो है ना, सलाम जो इस तरह करते, इस तरह करते हो, जब यानी जो नमाज ख़त्म करते हो, और जवाद हमारी तरह सलाम फेरता है, वह इराक के हैं, वो हमारी तरह सलाम फेरता है, हालांकि दोनों इस नाश्री है, तो ये क्यों इख्तलाफ है? मैंने कहा फिका हनफी का हर शख्स बर्मा से लेकर सेंट्रल एशिया से गुजर कर, तुर्की से गुजर कर, यूरोप के वस्त में बोस्निया तक एक ही किस्म का नमाज पढ़ेगा। कोई फ़र्क आपने देखा है? कोई फ़र्क? तो ये मैंने कहा ये मुदवन फिका का यही मतलब होता है कि वो इस्टेब्लिश्ड होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, हाँ जी। और जबकि आपका जो फिका है वो महफूज ही नहीं है, हाँ जी। तो इस वजह से जो है ना, मतलब ये है कि इनसे कहो भाई ये किसी कौन सा वक्त है, जल्दी फिर कर लो, उनको कह दे बस ये सवाल न करो क्योंकि मैंने जवाब देने। सवाल करने का वक्त ये है, मतलब वो तो नहीं, वो बात बाद में सवाल करें ना, जब खत्म हो जाए, सुन तो रहा होगा ना। बस ले आए, पर जो नहीं समझता तो छोड़ेगा। भाई बात सुने कि जिसने टेलीफोन वाले ने सवाल करने हैं तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि बाकी सवालात के जवाब ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर वो सवाल करें। अब इसके दरमियान में कैसे सवाल करें? मैं इसको छोड़ कर फिर उनको जवाब दूँ? तरतीब तो मैंने पहले बताई है कि पहले व्हाट्सएप वाली बातें ख़त्म होंगी, फिर इसके बाद ईमेल की बातें होंगी, फिर इसके बाद मैसेजेस होंगे, फिर इसके बाद जो है ना बाकी चीज़ होगी, तो एक तरतीब से चलेंगे तो मामला होगा, वरना फिर तो ये एक अजीब गरीब किस्म का गोरखधंधा बन जाएगा। अब देखो ना, सारा डिस्टर्ब कर लिया। एक भी उसूली हो जाए तो उसे इतना नुकसान हो जाता है। हज़रत अल्लाह ताला से दुआ में दुनिया मांगते हुए शर्म भी आती है मगर दिल में दुनिया के तमन्ना भी है, तो मांगने को दिल की दिमाग कहता भी है, क्या करूं? मुझे नहीं समझ आती कि आपको किसने कहा कि आप दुनिया नहीं मांग सकते, किस से मांगेंगे दुनिया? अल्लाह ही से मांगना है ना सब कुछ। अल्लाह रब्बना आतेना फिर दुनिया हसन होता हूँ फिर आखिर हसन होता हूँ नजाबन्ना, ये नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ में तो यही सूरह बकरा में आया है कि कुछ लोग सिर्फ दुनिया मांगते हैं तो उनको तो वो मिलेगा जो उनकी किस्मत में होगा, जो उनके मुकद्दर में होगा, और कुछ लोग दोनों मिलते हैं वो लोग अच्छे हैं। तो इस वजह से दुनिया को मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती का तस्मा टूट जाते, पहले अल्लाह ताला से मांगते, फिर इसके बाद जो है ना वो इसके लिए इंतज़ाम कर दे, हाँ जी। तो अब यह कि दुनिया की चीज़ों को भी मैं बीमार हूँ तो अल्लाह मशफी मरदनी, मतलब मेरे मर्ज को दुरुस्त फरमा, मतलब शिफा दे दे। हाँ, इस तरह इस किस्म की दुआएं मनकूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुनिया की चीज़ें ममनू नहीं है, अलबत्त दुनिया में मुनहमक होकर आखिरत को भूल जाना ये ममनू है, क्या सारी चीज़ें मतलब जो है वो आखिरत की बन जाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा मैंने इस पर बाकायदा पूरा बयान किया था। कुछ लोग कहते हैं जब हमारे पास आते हैं ना तो कहते हैं कमाल है, तो दुनिया की बात ही नहीं करते, हर वक्त बस आखिरत की बात आखिरत की बात, क्या दुनिया के काम नहीं चलाएंगे? कुछ लोग के जहन में सवाल आया, तो मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं भाई, हम खुद भी तो अल्लाह ताला से दुनिया मांगते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, ममनू बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया मांगने के लिए आपको कोई स्टिमुलेंट या कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बखुद मौजूद है। अल्लाह पाक जब फरमाते कल्ला बल तुहिब्बुन अल आजलत व तज़रुन अल आखिरा, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम जो फौरी चीज़ है उसको पसंद करते हो, जो बाद में आने वाली चीज़ उसको छोड़ते हो। आप बाजार में जाते तो हर चीज़ आपको दावत देती है, तो वो दावत 24 घंटे हैं। इस वजह से इसके लिए किसी और चीज़ के कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिरत की चीज़ की दावत सिर्फ यही है। जैसे इस जैसे जगह होंगी जहाँ पर इस किस्म की आवाज़ व नसीहत होगी, तो वहीं पर आखिरत की बातें होगी, किसी और जगह तो नहीं होगी। तो अब पता नहीं कितनी दफ़ा उस सुन लेंगे वो, अब सारे घंटे जमा कर ले पूरे हफ्ते में, वो कितने घंटे होंगे आज? तो अब इतने घंटे तो आपने ये सुना, तो आपने कहा जी हर वक्त ये हो रहा है आज, और जो मतलब एक 24 मतलब 24 को 7 से ज़रब दे दो पूरे हफ्ते का, उसमें से माइनस फ्यू घंटे फ्यू आवर्स, वो जो है ना वो सारा दुनिया की दुनिया आपको दावत दे रही है, उसको आप नहीं कह रहे हैं? हाँ जी, मिसाल के तौर पर 11 महीने आपका रोज़ा नहीं होता और आपके 1 महीना रोज़ा होता है, तो आप कहते हैं जी बस रोज़े ही चल रहे हैं। तो ये तो अजीब बात है, मतलब ये असल में मजबूरी है कि कुछ लोगों ने आखिरत की बात मुसलसल करनी होती है, क्योंकि अगर वो रिलैक्स कर दें तो इसमें भी कमी आ जाएगी और मज़ीद, क्योंकि वो चीज़ तो पहले से मौजूद है, उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो मौजूद है। तो बहरहाल इस वजह से अगर हम इस वजह से कहते तो उसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम दुनिया के ख़िलाफ़ हैं या दुनिया को बरतना नहीं चाहते या दुनिया की हर चीज़ को बुरा समझते हैं। नहीं, हम लोग ज़रूरत के कायल हैं और अपनी ज़रूरतों को अल्लाह पाक ही से मांगते हैं, अलबत्ता ये है कि आखिरत को गालिब करके, क्योंकि वो आखिर क्यों अल्लाह पाक ने खुद फरमाया बल तो शुरू ने हयात दुनिया वाला आखिरत तो खैर हूँ आपका, आखिरत खैर भी है और आखिरत बाकी रहने वाली भी। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू, अल्लाह के फ़ज़ल से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मंदरजा ज़ील अस्कार का 2 महीने पूरा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु 400 मरतबा, हक 600 मरतबा, हक अल्लाह 500 मरतबा, हु हक 500 मरतबा, अल्लाहु 200 मरतबा। हक अल्लाह के साथ ये तसव्वुर किया जाता था कि अल्लाह ताला मुझ पर हक को वाज़ी कर रहे हैं, मज़ीद रहनुमाई की दरख्वास्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब इसी को जारी रखें, लेकिन साथ ही 5 मिनट के लिए ज़रा गौर कर ले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अपनी बंदगी का हक कैसे अदा कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह ताला की बंदगी का हक कैसे अदा कर रहा हूँ, इस 5 मिनट मतलब ये सोच लिया करें। ये जो है ना मतलब रोज़ाना आप ये कर लिया करो, बाकी जिक्र आपका ये होगा इंशाल्लाह।
हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं मोहम्मद असद अंसारी बोल रहा हूँ यूके से, बर्मिंगम से। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बैत दिए हुए 1 महीना हो चुका है अब, और आपसे दरख्वास्त दुआ की कि अल्लाह इस तरीके पे इस्तेकामत दे इंशाअल्लाह। और मेरा सवाल ये था कि नमाज के मुतालिक, कि मैं जब नमाज पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे जहन जो है वो आगे पीछे चलते रहता है कामों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन मिलता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मिलता है कि जब नमाज़ पढ़ रहा हूँ कोई कोई आयत हो या कोई दुआ की कोई एक एक लाइन हो जिसमें फिर मेरा दिमाग उस तरफ निकल जाता है, मगर नमाज आगे बढ़ती जा रही है। जैसे सूरह फातिहा में इय्याके नाबुदु व इय्याके नस्तईन पढ़ूँ तो मेरा दिमाग कभी कभार इस मुतालिक पे चले जाता है, मगर नमाज बढ़ती जा रही है, सूरतें पढ़े जा रहे हूँ, रुकू पे चले जाता हूँ, मगर दिमाग वहीं है। तो ये पूछना था कि ये सही है या नमाज में जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आपको हर हर चीज़ जल्दी जल्दी अपने दिमाग को उस चीज़ पे लगाना है जिस 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 हिस्से नमाज का है। और दूसरी ये पूछना था कि आपसे दरख्वास्त थी कि आप शायद बता सकें कि आप नमाज़ पढ़ते हुए क्या सोचते हैं, कहाँ पे आपका जहन जाता है या कहाँ पे अलाउड है कि हमारा जहन जा सके नमाज में, क्योंकि हर हिस्सा नमाज का कभी कभार उसका मतलब भी नहीं पता होता। तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो कोई आयत पढ़ रहे हैं, मगर उसका अगर मतलब नहीं पता तो फिर दिमाग में क्या सोचें, किस तरीके से पूरी नमाज अदा करें, जो सिर्फ ज़ाहरी नहीं मगर बातिनी भी दुरुस्त अपनी नमाज करने के लिए अगर कोशिश कर सकें। तो इसके लिए अगर आप कुछ नसीहत दे सकें तो
माशाल्लाह, अच्छा सवाल है, अमली सवाल है और ये बहुत सारे लोगों को पेश आता है, लेकिन इसकी जो असल जो कोर मतलब जन उसको ना जानने की वजह से बस दफ़ा परेशानी का शिकार हो जाता है। नमाज अल्लाह की इबादत है और अल्लाह पाक ने इसको जैसा मुकर्रर किया है उसको प्रेफरेंस देना सबसे बड़ी अकलमंदी है। मैं अगर नमाज में तरतीब थोड़ी सी भी चेंज कर लूँ तो वो नमाज नहीं रहेगी। मसलन मैं सजदा पहले कर लूँ और रुकू बाद में कर लूँ तो क्या नमाज होगी? खैर वो नमाज तो नहीं होगी। तो खैर बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन मैंने सिर्फ मैग्नीफाई करने के लिए मिसाल को मैग्नीफाई किया ताकि जो है ना क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से नमाज के जितने भी अरकान है उसमें उस रुकन का इस्तेहजार ये रिक्वायर्ड है। होता है नहीं होता अभी एक अलहदा बात है, उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो मैं पहले सिर्फ उसूल बता रहा हूँ कि रिक्वायर्ड ये है कि जो रुकन आप अदा कर रहे हैं उस रुकन का आपको इस्तेज़ार हो। सजदे में हो तो आपको सजदे के हालात मालूम हो और सजदे के मुताबिक काम करना चाहिए। हाँ जी, रुकू में हो तो रुकू के मुताबिक काम करना चाहिए, कौमा हो तो कौमे के मुताबिक काम करना, जलसा हो तो जलसे के मुताबिक काम करना चाहिए, क्याम हो तो क्याम के मुताबिक काम करना चाहिए। यानी आपको हर हर रुकन के अंदर मुस्तहज़र ये वही रुकन चाहिए होना चाहिए जिसमें आप हैं। इख्तियारी तौर पर तो ये है। जहाँ तक गैर इख्तियारी बात है तो चूंकि अल्लाह पाक ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह पाक किसी को इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं बनाते जिसको वो कर नहीं सकता, तो अपने मर्जी से तो कोई ना करे इस तरह। लेकिन अगर हो जाए और जिस वक्त याद आ जाए तो फौरन नेक्स्ट में चला जाए, यानी उस रुकन में चला जाए जिस रुकन में वो है, तखयल के लिहाज से। ऐसा ना हो कि मौजूद रहे उसमें, नहीं मतलब अपने तसव्वुर के लिहाज से कि ज़हनी तौर पर मुस्तहज़र हो वही चीज़, ये मतलब उस वक्त जाइए। तो ये मतलब यानी उसकी कंपनसेशन है, क्योंकि वजह यह है कि जहन किसी के अख्तियार में नहीं है, दिल भी किसी के अख्तियार में नहीं है, ख्याल किसी के अख्तियार में नहीं है। ये वाली बात सही है। अब अगर किसी का ख्याल किसी अच्छी चीज़ की तरफ चला गया तो भी अगर वो उस रुकन से हट गया तो ठीक नहीं है, लिहाजा उस रुकन पे उसको लाना चाहिए। लेकिन अगर गलत गोए जिसको कहते ना वो भूल जाए सारा कुछ, वो उसमें गुम हो जाए, तो चूंकि वो गुम हो गया और उसने अभी नमाज की जाहिर को नहीं चेंज किया, नमाज की जाहिर को उसने नहीं चेंज किया, मसलन वही उस रुकू में जो करना चाहिए था, जो पढ़ना चाहिए था, वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो अभी क़याम की हालत में जो है या करना बदो या करना सही में है। हाँ जी, तो उसकी नमाज भी हो जाएगी और उसको मसला भी उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक वो अपनी मर्जी से उसमें स्टे नहीं करेंगे। और जैसे उसको पता चल जाए कि वो तो नहीं है तो उस फौरन उसमें मतलब जैन क्विट करके मतलब वो अपने असल मुकाम पे आ जाए। आपने मेरी नमाज के बारे में पूछा है तो मैं तो नमाज के लिहाज से मुक्तदा नहीं हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमारे ए तुम नहीं उसल्ली, इसके बजाय आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप सलम कैसे नमाज पढ़ते थे। हाँ जी, यानी उसमें रसूल अक्रम सलम मतलब उसमें आप देख लें आप सलम की नमाज का तरीका क्या था, तो उसको सीखें और इसी पे अमल कर लें। नमाज में आप मेरे पीछे ना चलें, नमाज में तो आपने मैं तो आपको यही बताऊंगा ना कि आप नमाज में आप सलम के पीछे चलें। इमाम असल में तो आप हमारे आप सलम हैं इस मसले में, लिहाजा आप सलम का तरीका सीखें, बस वही आपके लिए। वो मैं भी कर रहा हूँ आप भी करेंगे इंशाल्लाह, इस मसले में हम सब एक हैं, इसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं है। अलबत्त ये है कि तरीका मैंने बता दिया कि अगर दरमियान में कहीं पर कुछ स्किप हो जाए जहनी तौर पर, तो जैसे याद आ जाए तो फौरन उस तरफ जाना चाहिए।
हज़रत, दूसरा सवाल ये था कि इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ फैमिली के साथ। मेरी बीवी के चचा जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और डॉक्टर्स ने उनको चंद दिन हफ्ते की मोहलत दी है। वैसे तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, तो इसलिए एक तो पहले आपसे दुआ मांगनी थी कि अल्लाह उनकी इंशाल्लाह सेहत को तंदुरुस्त करें और बेहतर कर दें, और इंशाल्लाह अगर उनका वक्त है तो फिर मगफिरत दे दें उनको, इंशाल्लाह दुआ करें उनके लिए। और दूसरी बात ये थी कि जब अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने से जो अपना टाइम टेबल बन गया है मेरे हिसाब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें और ज़िक्र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं जो आपने दी हुई हैं, मगर अब थोड़ा सा डर है कि एक हफ़्ते के लिए अगर बाहर जाऊं तो पूरी रूटीन जो है वो आगे पीछे हो जाती है जब आप बाहर होते हैं। तो थोड़ा सा ये खौफ बैठ गया है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला शुरू हो गया इबादत का, कि वो ख़राब ना हो जाके और फिर अपनी नमाजें या अपनी कोई इबादत या ज़िक्र जो है वो छूट ना जाए। तो ज़रा अगर कुछ नसीहत दे सकें, दुआ भी कर सकें मेरे लिए इंशाल्लाह, कि जब बाहर हों और ट्रैवलिंग कर रहे हों तो और अपने टाइम टेबल जो है वो आगे पीछे हुआ है, तो किस तरीक़ों से हम जो हैं उस अपनी इबादत जो है वो मुकम्मल करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल किया। अलबत्त आपके चचा के बारे में वाकई मुझे भी फिक्र है, आपकी बीवी के चचे के बारे में मुझे फारूक साहब ने बताया था। अल्लाह जल्ला शानो उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, और वाकई जैसे आपने कहा कि अगर वक्त आया हुआ है तो हजरत के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। हाँ, बाज़ दफ़ा इसकी दुआ भी की जाती है कि अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमा दे। बहरहाल ये वाली बात मैं अर्ज़ करूँगा कि सफ़र के अंदर अपने आमाल की हिफाजत करनी होती है, लेकिन तरतीब कुछ थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। यानी हम यहाँ पर जोर देते हैं कि मुकर्रर वक़्त पे आप जिक्र कर लें, तो ये सख्ती फिर उसमें हम नहीं रखते। हम कहते हैं कि बस जो आपने जिस 12 घंटे में इसको शुरू किया, 12 घंटे से मुराद ये कि अगर दिन में आपने शुरू किया तो दिन में हो जाए, और अगर रात में शुरू किया तो रात में उस रात में हो जाए, यानी वो अगले उस पर ना शिफ्ट हो, उसका ख्याल रख ज़रूर रखे। बाकी जो है ना, मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इसकी परवाह ना करे। आप अल्लाह पाक ने भी तो गुंजाइश की है, कसर की नमाज को मुख्तसर कर दिया है, तो लिहाजा जुमात की पाबंदी भी हटा दी है। यानी प्रेफर्ड तो है कि जुमात ही के साथ नमाज पढ़ो, अजर मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाली बात है कि अगर ना हो सके तो उस पर इतना इताब नहीं है जितना कि इंसान अपने जगह पे मौजूद हो तो उस पर होता है। लिहाजा मतलब इस मसले में तो बहरहाल ये है कि नमाजों का हिफाजत कर लें, और उसमें ये वाली बात है कि ट्रेवलिंग के दौरान मतलब ये है कि आप चूंकि अमेरिका जा रहे हैं तो इस तरफ से जाना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, उसकी वजह से आपको टाइम मिलेगा, यू विल गेट टाइम। मैं जब अमेरिका जा रहा था तो फ्रैंकफर्ट से जब रवाना हुआ तो उस वक्त 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट हुई, और 1:15 बजे हम अमेरिका में उतरे, और ये 7 घंटे का फ़्लाइट था 7 घंटे का फ़्लाइट था, और डिफरेंस कितना आया, 2 घंटे का। तो वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे ना, तो वेस्ट की तरफ जाने की वजह से टाइम हम गेन कर रहे थे, तो इस वजह से आपको सहूलत होगी इंशाल्लाह। यानी इस तरफ से मतलब जाना मसला कोई नहीं होगा, अलबत्त वापसी में वाकई मसला होगा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी तब्दील होगा। बहुत जल्दी इधर से दो, मतलब यानी कि वो कहते हैं कि अगर कराची से कोई अमेरिका जाए तो इधर से दो नमाजें आती हैं और उधर से सात नमाजें आती हैं। हाँ जी, तो फिर वो जल्दी जल्दी तब्दील होगा, तो बस फिर अपना वजू बरकरार रखना है, और मतलब यह है कि अपने साथ कपड़ा भी रखना है जहाज़ में, तो जैसे मतलब यह है कि आपका हो जाए। और एक मैं आपको एक खूबसूरत बात अपने ट्रेवलिंग के लिहाज से बता, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि फरमाते हैं कि जो नमाज के इंतज़ार में होता है वो नमाज में है, जो नमाज के इंतज़ार में है वो नमाज में है। अब यहाँ पर हम कितनी नमाज लंबी पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होगा, 20 मिनट होंगे, फ़र्ज़ और सुन्नतों के साथ मिलाकर इतना हो गया ना। लेकिन अगर मैं अगली नमाज के 2 घंटे इंतज़ार कर रहा हूँ तो वो भी मैं नमाज में हूँ, कितना मज़ा है। हाँ जी, अब जहाज़ में आपने वज़ू भी बाकी रखा हुआ है, क्योंकि वज़ू मुश्किल होता है। वैसे वज़ू का भी मैं तरीका बताता हूँ, वो जो स्प्रे नहीं होता, स्प्रे वाली बॉटल, स्प्रे बॉटल, उसको अगर आप पानी से भर दें तो आप स्प्रे के ज़रिए से जो है ना, मतलब ये है कि बहुत आसानी के साथ थोड़े पानी के साथ आप वज़ू कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और अगर मोज़े पहन सकते हैं तो फिर वो तो मसह करना होगा, तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मोज़े पहन ले तो पैर धोना भी बहुत आसान हो, पैर धोने नहीं पड़ेंगे तो वज़ू जहाज़ में बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो आपको ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बात है तो फिर तो आपको पता है वहाँ टॉयलेट्स भी बड़े छोटे से होते हैं, तंग होते हैं, तो वज़ू करना वाकई काम होता है। हाँ जी, तो उस सूरत में वज़ू कायम रखना है सबसे बड़ा काम होता है, मतलब यह है कि इंसान अपना वज़ू कायम रखे। तो ये जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप नमाज़ों की हिफाज़त कर ले तो इंशाअल्लाह ये एक ट्रेवलिंग आपकी बहुत काम आएगी, नमाज की इस्तेकामत के लिहाज से। ये आपके लिए गोया कि जैसे होता है ना, आप किसी नरम चीज़ पर कोई लकीर खींचे तो जल्दी मिट जाती है, और अगर सख्त चीज़ पर लकीर खींचे एक दफ़ा मुश्किल से तो खींचती है, खींच जाती है, लेकिन फिर वो जाती नहीं है। तो अगर आपने ये लकीर जो है ना वो खींच दी ना एक दफ़ा, तो इंशाल्लाह लजीज़ ये फिर इसका असर उम्र भर रहेगा। तो ये जो है ना, ये आप जो है ना मतलब उसको कर लें तो इंशाल्लाह आपको नमाजों का मसला नहीं होगा। बाकी ये है कि जहाज हमारा जिक्र है वो तो आप जहाज़ में भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। तकरीबन उस पर कितना टाइम लगता हो, तो 20 मिनट तकरीबन लगते हैं उस पर, तो 20 मिनट तो आपको मिल ही जाया करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, प्रियोरिटी उसको इतना ज़रूर दे के उसको टाइम ज़रूर निकालें। हाँ जी, क्योंकि आपका तसलसल ना टूटे वो 40 दिन वाला। बाकी तो आपके मामूलात है, उसमें अल्लाह पाक ने काफ़ी गुंजाइश की है, उस गुंजाइश से आप फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत, मैं तक किया हूँ, अब नहीं रह जाता नफ्स का बंदा बन के, अब तो बस अल्लाह पाक के लिए हर काम हो। ये क्या है कि अल्लाह पाक कैफियत से नवाज़ दे तो सब ठीक, और जब कैफियत ख़त्म हो जाए तो फिर से नाफरमानी। मैं तंग आ गया हूँ, मुझे अल्लाह पाक का होना है, मेरी कबूलियत कैसे होगी, क्या करना है, कैसे करने में तैयार हो। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा इरादा है और बहुत अच्छे मतलब सोच है। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, मैंने सवाल किया क्या ये सब गैर अख्तियारी है। हाँ जी, ये अगर आप करना चाहते हैं तो क्या गैर अख्तियारी है। उसने कहा कि नहीं, अख्तियारी है। तो मैंने कहा फिर इंतज़ार किस बात का, या बिस्मिल्लाह शुरू कर लें। जाहिर जब अख्तियारी है तो फिर उसमें तो बस काम लो। हाँ जी, तो इस वजह से मतलब ये है कि बात चीज़ें ऐसे होती हैं कि इंसान उसको पहाड़ समझता है लेकिन वो बहुत आसान होती हैं। माशाल्लाह, अच्छा जी, हाँ सलामुअलैकुम जी, जी 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 फरमाए। इसके साथ तो सवाल आ जाएगा उस पे, मतलब वो इसके स्पीकर का वो मिला देना इसके साथ। आप अपना सवाल अभी दोबारा कर लें।
हजरत जी, मैं एक ग्रुप बनाना चाहता था जिसमें मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, पार्टी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं सब। तो वो ग्रुप जो हमारा पैगाम शेयर कर, जो फजर के आ रहे होते हैं और कुछ आयात वगैरह तरह की आ रही होती है, तो मैं चाह रहा था कि वो सबके साथ शेयर करूं, जो भी हमारे यानी के सिलसिले से जो आपके वो निस्बत से है। तो साथ में ये भी चाह रहा था कि भाई मैं अपनी पब्लिसिटी का भी थोड़ा सा, जैसे कोई प्लॉट फॉर सेल है या कोई कोठी फॉर सेल है, तो वो भी उसमें दे सकता हूँ कि या नहीं दे सकता।
ये जो आप सुन रहे हैं, मतलब जो हम कह रहे हैं, मतलब ये कि आप अभी डायरेक्ट बयान सुन रहे हैं। अच्छा, तो मैं उसी पर जवाब देता हूँ। अच्छा, बात सुन ली आपने। असल में उसूली तौर पर मुझे इसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि आप पहले से अपना काम दुनिया के लिए कर रहे हैं जो जायज़ है, और उसके साथ एक अच्छा काम को शामिल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल है जो मैं समझाता हूँ, जिसकी वजह से मसला होगा, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में कुछ रिजर्वेशन है। वो ये है कि अभी तक हमने कहा कि दीन के काम को दुनिया के लिए इस्तेमाल न करो, ये हमारा उसूल है, और ये उसूल से हमारे साथी से उन्हें तस्लीम किया हुआ है। अब अगर हम इस तरह करेंगे जैसे आप करेंगे, तो कम से कम इसमें ये ख्याल होगा कि लोग कहेंगे भाई ये तो, ये उसूल तो इसने तोड़ दिया। हाँ जी, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा, तो इसमें फिर सिलसिले के ऊपर बात आएगी। अलबत्ता आप यूँ कर सकते हैं कि अपना ग्रुप बना ले, अपने नाम से बना ले, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, और आप अपनी मर्जी से इस ग्रुप की अच्छी अच्छी चीज़ें देते जाएँ। तो ज़ाहिर है, वो कब कुरान पाक के देते जाए तो कुरान पर एतराज़ तो नहीं करेगा। हाँ जी, इस तरह हदीस शरीफ देते जाएँ तो आपको हदीस शरीफ पे तो आप हदीस शरीफ पर तो एतराज़ आप पर कोई नहीं करेगा। तो वो जो है ना, वो ये इस किस्म की बात है कि जो अच्छी अच्छी बात है, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से भी चुन ले तो चुन सकते हैं, और आप अपने ग्रुप में दे सकते हैं, और आपके लिए सदका जारी होगा, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा कि हम मतलब लोग कहें कि भाई इन्होंने जो है ना वो किया है, तो हम लोग इससे बरी हो जाएंगे। एक सवाल है, ज़रा लंबा है और ज़रा थोड़ा सा प्राइवेट भी है, तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। कोई किसी की गाड़ी के तो मसले नहीं है। Assalamu alaikum, Hazrat. One thing I wanted to tell you about my hal. A few days ago, I had a disagreement with my wife and I became angry. I did not yell or shout, but I became so angry that I threw my topi on the floor. Usually, if I feel I am getting angry, I go for a walk and I do not stay angry long. I remind myself that one day I will die and stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but sometimes I feel the anger inside becomes too much. This is very rare for me, but I wanted you to tell no. Brother, you did correct. When you are angry, so it's better to leave that place and change your condition and make yourself busy in something else. This is the procedure to get rid of this anger. Anyhow, there is a peak of anger, and in that anything can happen. Once anger was asked, where do you live? So they told, I am in mind. So they told that in mind, akal is there. So it was told, when I come, akal leaves the place for me. So it means these two things cannot be at the same time present. So one should make himself busy that he can spend that time not at that place, because he can do anything at that time. So that will make problem for him. For example, there might be some situation in which one can kill another one. So that is a big step. Or he can give some slap on the face by which some major problem can occur. So it means he should get rid of this and leave the place. And then that peak, when it is over, so then he comes and senses, and then there's no problem. So it's you, I think, doing right that you leave the place. And once you feel that the inside pressure is tremendous, so then you should go out with tremendous speed. Because that will make more problem. So therefore, your speed of going out should be comparable with the pressure inside your body. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. अक्सर ऐसा होता है कि नवाफिल हो या तहज्जुद, मुझे इनके बारे में बार बार कहीं किसी पोस्ट या किसी बातों से अंदाज़ा होता है कि इस बात की तकीद की जा रही है, तवज्जो दिलाई जा रही है। ऐसा आजकल हो रहा है, जिसका मतलब है कि मुझे सिर्फ वाजिब नमाजों के साथ उनके नवाफिल भी अदा करने चाहिए दोबारा, जैसे पहले किया करती थी। लेकिन मैं अंदर से ख़ुद को पहले की तरह आमादा नहीं पाती। पहले तो यूँ होता था जैसे मुझे नमाज की प्यास लगी और हर नमाज के वक्त से पहले मैं वज़ू करके तैयारी करके बैठ जाती। इस वक्त अल्लाह पाक ने मेरे लिए वक्त में बरकत डाल ली थी कि घर के काम काज के बाद भी मुझे मुझ में इन सारे नवाफिल अदा करने की एनर्जी भी होती थी और वक़्त भी हुआ करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं जल्दी थक जाती हूँ, क्या मुझे नवाफिल शुरू करने चाहिए? और फिर देखूँ कि उनमें प्यारे दिल पहले की तरह लगते ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ फजर और इशा की नफल अदा करती हूँ जो सुन्नत मौक्कद है। बहन, बात यह है कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला तो बार बार वो चीज़ें हमारे सामने लाते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, और ये सिर्फ आपके साथ खास नहीं है, सब के साथ है। लेकिन कोई सेंस करता है, कोई नहीं सेंस करता। अच्छा है कि आप सेंस कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि एक होती है इंटरनल डिज़ायर से आप एक काम करने, और एक होता है अकल से आता है काम करना। यानी आपको मसले का पता है और आपकी तबीयत उसकी तरफ नहीं है, लेकिन आप तबीयत पर जबर करके उसको महज अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह ताला की रजा के लिए आप करती हैं, तो अजर किसका ज़्यादा होगा? हाँ जी, अजर तो दूसरे केस का ज़्यादा है। हाँ जी, अक्सर लोग पहले केस का अजर ज़्यादा समझते हैं, और ये गलती है। पहले केस का अजर कम है, दूसरे केस का अजर। अब इसी वजह से अल्लाह हम पर करम करके हमें चूंकि ज़्यादा अजर देना चाहते हैं, तो पहले की चीज़ वापस ले लेते हैं। वो पहले चीज़ जो दे दी होती है सिर्फ मिठाई होती है, ताकि ये चीज़ ताकि इसकी तरफ आ जाए, और जिस वक्त आ जाए फिर पिटाई होती है ताकि सीधे हो जाए। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अभी भी आपके पास माशाल्लाह मैसेज है, लेकिन ये मैसेज जरा दूसरे तरीके से है, अंदर से नहीं बाहर से। मैसेज तो है ना, और आपको पता है शरीयत बाहर से होता है, शरीयत बाहर से आता है, शरीयत अंदर से आता है। कैफियत और जज्बात अंदर से आती है, शरीयत बाहर से आती है। हाँ जी, तो आप शरीयत बाहर से आती है तो कहां से आती है? अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह के रसूल की तरफ से आती है। तो जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तरफ से चीज़ आती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या जो हमारे अंदर से आती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? तो अगर बाहर वाले निज़ाम अंदर के निज़ाम पर नाफिज कर दे, अगर बाहर वाले निज़ाम अपने अंदर अपने ऊपर नाफिज कर दे, तो ये हमारी बेहतरी की बात है, ठीक है ना? तो अब इस तरह कर ले कि जो नवाफिल हैं, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि मेरे लिए इसमें फ़ायदा है, तो ये बाहर की बात पर आपकी यकीन है और आप इसमें माशाल्लाह फ़ायदा समझती हैं, तो आप इसको शुरू कर लें। और ये जो आपने कहा है, ये नवाफिल के डिफिनीशन में तो आते हैं, लेकिन ये तो सुन्नत मुकदा बाकायदा कहलाता टर्म है उसके लिए। वो नवाफिल उसको कहते हैं जिसके छोड़ने पे कोई मसला ना हो और जिसके करने पे अजर हो। मसलन तहज्जुद, मसलन इशराक, मसलन चाश्त, मसलन वाबीन, मसलन असर और मशा की चार सुन्नतें जो इससे पहली पढ़ी जाती हैं, ये जो है ना, ये नवाफिल, ये मसनून नवाफिल है। मसनून नवाफिल से आप सब भी करते थे, सुन्नत ज़वाल भी है। तो ये जो है ना, मतलब ये क्या, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि इस तसव्वुफ में पहला कदम मुस्तहबात की रियायत है। मुस्ताब किस चीज़ को कहते हैं? तसव्वुफ किस मकसद के लिए, मुझे आप बताएं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए ना, क्योंकि पहले इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, फिर नफ्स की तरबियत होती है उसके ज़रिए से। तो अल्लाह की मोहब्बत का पहले उसका पहला स्टेप है ना। जब उसका पहला स्टेप है, तो मुस्ताब किस चीज़ को कहते हैं? जिसको अल्लाह पसंद करता है। तो जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, उसका पसंदीदा चीज़ आप नहीं लेंगे? हाँ जी, ज़ारे आप लेंगे ना। तो लिहाजा तसव्वुफ में पहला कदम क्या होता है? मुस्तहबात की रियायत है। लिहाजा अगर आप पहला कदम लेना चाहती है, तो अभी आप मुस्तहबात की रियायत शुरू कर लें और नवाफिल शुरू कर लें, उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं बयान के लिए इस किताब के अलावा को इस वक्त दिल में आ गए आगे कर सकते हूँ। मेरा तरीका गलत तो नहीं? खैर वो तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जिक्र करते वक्त अब दिल में एक और हरकत भी महसूस हुई। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसको बढ़ा दे और ज़्यादा बेहतर कर ले। जब आपका बयान सुनती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मेरा पाँव भी तेज़ जिक्र कर रहा है। ठीक है, ये कैफियात है, अल्लाह ताला इसको खैर की तरफ ले।
السلام علیکم حضرات زما وظیفه پرون پرشی زه عثمان خبرې کوم کویت نه زما وظیفه وا 200 زله لا اله الا الله سلور سو زله لا اله الا هو او شپږ سو زله حق او سلور سو زله الله دا زما وظیفه
سمروي اچھا میں ذرا جاتا ہوں اسے میں ادھر سے अच्छा क्या बताएं? तो अच्छा इस वक्त अब आप यूँ कर ले कि 200 400 600 और 500 इंशाल्लाह अज़ीज़। अभी ये तो ख़त्म हो गया, अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो ईमेल्स में है मैं देख लेता हूँ। हाँ एक और आया है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात दस की खिदमत में अर्ज़ है कि मेरा 40 दिन का बरकब हदीयत लतीफ़ खफ़ी पर मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ लतीफ़ अख़फ़ा पर रह गया, बाकी चारों लताए पर मुकम्मल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह 200, इल्लल्लाह 400, अल्लाहु अल्लाह 600 और अल्लाह 100 दफ़ा, ये जिक्र का मामूल है। तो जिक्र तो यही रखें और लतीफ़ अख़फ़ा वाला जो है ना वो जो मरकब हदीयत है उसको शुरू कर लें। हज़रत जी अल्लाह पाक से दुआ है अब कि आप सलामत रहे। हज़रत जी आजकल नमाज में पाकी नापाकी का बहुत वसवसा आ रहा है, ख़ासकर वजू टूटने का। नमाज के बाद यही परेशानी रहती है कि नमाज हुई कि नहीं। अपने आप को समझाते रहो कि जब कसम नहीं उठा सकते तो नमाज हो चुकी होगी, लेकिन बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। हाँ, ये वाली बात सही है कि ये शक की बीमारी है और शक की बीमारी में ऐसा होता है, लेकिन इसमें आप को वही उसूल अपनाना पड़ेगा, कसम वाली बात, कि अगर आपको कसम दिया जाए कि आपका वजू टूट गया है नहीं, तो अगर आप कह सकें कि कसम है कि वजू टूट गया, तो फिर तो आपका वजू टूट गया, और अगर आप इस पर कसम नहीं खा सकें तो इसका मतलब है कि आपको शक है, यकीन नहीं है, तो शक से वजू नहीं टूटता, शक से यकीन नहीं बन ख़त्म होता। ये मशहूर कायदा है, ये शक जो है ना, मतलब शक से जो है ना, मतलब यकीन, चूंकि आपका वजू पहले चल रहा था उस पर यकीन था, तो जब तक यकीन ना हो कि वजू टूट गया उस वक़्त तक ये दूसरी बात नहीं हुई, तो इस वजह से आप जो है ना इसी पे अमल करें। बेशक आपकी तकलीफ़ आपको तबीयत पे बोझ भी हो, लेकिन शरी मसला यही है, इसी पे अमल कर ले, वरना ये बात आगे बढ़ेगी। तो अब अगर कोई सामने क्वेश्चंस हो तो थोड़ी देर है कर सकते हैं। जी फरमाए, प्लीज करीब भी आ जाए आप, सर दोनों से दे दें। ये नमाज का टाइम तब्दील तो नहीं किया, पौनी आठ ही
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत, मैं कल हजबुल आजम पढ़ रहा था,
है। हाँ
उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था मुख्तसर सलातुल तस्वीर।
अच्छा
अच्छा, उसमें उन्होंने तरतीब ये कही थी कि आप किसी भी नमाज में या नवाफिल में 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें, उसमें किसी एक रकात में या किसी एक रुकन में नमाज के 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लें, और उसमें साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप किसी की सहाबा सहाबिया की इबादत के बारे में बता रहे थे, उसका भी जिक्र था इस हवाले से। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि
अजान के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله
आपने जो सवाल किया है कि हिजब आज़म में मुख्तसर चूँकि सला तस्बीह का जिक्र है, असल में नवाफिल में तो बड़ी गुंजाइश है, नवाफिल में तो दुआएं खोमा भी होती है, जलसे में भी होती है, रुकू में भी होती है, सजदे में भी होती है। हाँ जी, मुख्तलिफ मौके की दुआएं हैं तो वो भी करनी चाहिए जिनको आती हो, मुख्तलिफ तस्बीहात भी पढ़ी जा सकती है जैसे आपने फरमाया, तो लिहाजा उन तस्बीहात का अजर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि नमाज के अंदर है तो उसका अजर बढ़ जाता है। अलबत्ता जो सला तस्बीह मारूफ है वो तो वही है,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے ان سے جو مروی ہے وہ متواتر چلا آ رہا ہے. لہٰذا اور کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں سیکھا جا سکتا ہے. تو میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ میرے خیال میں پڑھنا تو وہی صلاح تسبیح چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ نفلی نمازوں میں گنجائش بہت زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے میں کوئی بات نہیں کر رہا فی الحال, کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ اس لیے کہ اور بھی اذکار اس میں ہو سکتے ہیں. ہاں جی, تو اور دعائیں بھی اس میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سوال کوئی ان کا دے دیں ان کو کرنے. جی جی کر لیں.
یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم لوگ بینک کے تھرو اگر کوئی بندہ مکان لیتا ہے, جیسے آج کل بینکس کی اسکیمز ہیں کہ یہ آپ 60-70% آپ انویسٹ کریں, 30% ہم سے لیں, لیکن اس میں بینک سود تو ڈالتا ہے بھی جب ریٹرن لیتا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لے سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں لے سکتے.
دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسلامی طریقے پہ لینا, ایک ہوتا ہے غیر اسلامی طریقے پہ لینا, دونوں میں فرق ہے. اسلامی طریقے لینے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہے, پیسے آپ کو دے کے سروس آپ کے مطلب اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پہ کرایہ وہ لگاتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کو لیتے ہیں. تو اس کی ایک وہ ہے, جیسے میزان بینک والے کر رہے ہیں, کچھ اور بینک بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی جو ترتیب ہے جس بینک کے بھی ہے, وہ ترتیب سارا لکھ کر جو ان مسئلوں کو جانتا ہو ان مسئلوں کو اس مفتی سے آپ استفتاء لے لیں تو وہی صحیح سلوشن ہے. کیونکہ اگر مثال کے طور پر میزان بینک کا میں کہوں تو جو انہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا مفتیوں کے ساتھ, اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. ہاں جی, لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو ذرا فریش فتویٰ لینا مناسب ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ جب بھی کسی کو اس طرح بڑا ڈیل کرنا چاہیں تو ان سے ہم معلوم کر لیں مفتیوں سے کہ کیا یہ چیز صورت جائز ہے نہیں. اگر وہ جائز کا انہیں کہہ دے تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے.
جی. اسی سوال کے حوالے سے جیسے یہ چیزیں جو پالیسی ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ بیس کرتی ہیں, ود ان ٹائم لمٹ آپ نے وہ پیمنٹ بینک کو جمع کرانی ہوتی ہے, کچھ فتووں کے لحاظ سے وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن اگر آپ وہ نہیں دے سکے, انسان کے ساتھ دکھ بیماری موت یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, میں اب دیکھوں گا میرا بجٹ ہے میں کر سکتا ہوں, دانا خاصہ مجھے کچھ ہو گیا گھر والوں کا وہ حساب ان کا نہیں بنتا, تو وہ چیزیں تو پھر آگے بڑھتی جائیں گی, وہ پیمنٹ بڑھتی جائے گی, تو اس لحاظ سے یہ کرنا ہے.
دیکھیے, میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے اصول جواب تو دے دیا کہ یہ چیزیں دیکھیں, میں آپ کو اسپیشل سبجیکٹ ہے, یہ جنرل سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہر مفتی کو بھی اس کا پتا ہو. چیزیں ہے کہ ایک نیو کمر کو اس کا اتنا زیادہ پتا ہو, نیو کمر کو تو بہت کم پتا ہو, جیسے میں بھی ایک نیو کمر ہوں اس مسئلے میں, تو اب میں کوئی بات کر لوں اور وہ آپ سمجھے کہ تو ٹھیک ہے اور وہ غلط ہو تو اس کا تو ذمہ دار میں ہو جاؤں گا نا. تو اس ایسا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں جو اس کا اتھرائز بھی ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ کر بھی سکتا ہے. تو اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا, کیونکہ اللہ پاک سے چیزوں میں سو معاف کر لیتے ہیں. لیکن اناڑی آدمی کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی کہ تو تو اس سبجیکٹ کا ماہر نہیں تھا, تو نے درمیان میں کیوں بات کی. مطلب یہ مطلب یہ ہے نا کہ یہ جیسے ڈاکٹر ہے نا, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی مر بھی جائے اور لیکن وہ صحیح علاج اس کا کرنا چاہتا ہو, لیکن غلطی سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور موت تو آنی ہوتی ہے, تو اگر وہ مر جائے تو اس کو وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن اگر وہ عطائی ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ جس کو کوئک کہتے ہیں, تو اس کی گرفتاری ہوگی, مطلب وہ جو ہے نا وہ گناہ گار ہوگا, کیونکہ وہ اس کا وہ نہیں تھا, مقام اس کا نہیں تھا, وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس نے کیا تو یہ از رسپانسبل آتے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے اصولی جواب ان کو دے دی ہے. میرے خیال میں یہ فارمولہ آپ لوگ سمجھے نہیں, میں تو بار بار ہی کہتا ہوں کہ یہ تصوف سے متعلق سوالوں کی جگہ ہے, تصوف سے متعلق, کیونکہ تصوف سے متعلق سوال آپ مفتی سے نہیں کریں گے, وہ کریں گے تو غلط ہوگا اگر وہ صوفی نہیں ہے. ہاں جی, اور فتویٰ سے متعلق سوال اگر آپ صوفیوں سے کریں گے, اگر مفتی نہیں تو پھر غلط ہوگا. جیسے ڈاکٹری سے متعلق سوال آپ انجینئر سے نہیں کریں گے, انجینئرنگ سے متعلق سوال آپ ڈاکٹر سے نہیں کریں گے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. میرے خیال میں ٹائم بس ہونے والا ہے, لہٰذا مختصر سا ذکر کر کے. لا الہ الا اللہ, 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 الا اللہ, لا الہ 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 الا الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ, محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو. اللہم صل علی سیدنا محمد. حق 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 حق. اللہ 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 صلی اللہ سیدنا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا صلی اللہ تعالیٰ